ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते हो तत्व श्रद्धा चरण धार केवल पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ चासते जाने निज गुण धाम लब्धि सार को पाय करी कई क्षपणासा हो है प्रवचन सार सो समय सार तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में चारों ही अनुयोगों द्वारा कथन होता है। उसमें से यहाँ हम करणानुयोग के द्वारा अपना स्वरूप क्या है उसकी बात निश्चित कर रहे हैं। हम पृष्ठ संख्या 76 मेरे में आप में दो पृष्ठ कम होगी शायद।
क्या लेना है आपको?
हाँ। जीव क्या है धर्म इसके पर यही पर 76 पहली लाइन नितांत अज्ञान से देखो एक लाइन पहले पृष्ठ 75 की अंतिम लाइन। सुबह हमने इसकी बात की थी फिर भी यहाँ करणानियोग संबंधी कुछ प्राथमिक बातें जानने से हमें क्या लाभ होगा उसकी बात चल रही है कि जीव तो अज्ञानी है उसको मैं स्वयं कौन हूँ इस बात का पता नहीं है तो उसको तो आत्मा यानी जीव क्या है इस संदर्भ में बातें सिखानी है। तो हम कहेंगे आत्मा क्या होता है? आत्मा आत्मा होती है। आत्मा किस में? आत्मा आत्मा में है पर से संबंध ही नहीं तो उस कुछ नहीं समझेगा। तो इसलिए पर की सापेक्षता से पहले उसको समझाया जाता है। हमने कोई चीज कहीं रखी हो तो हमें अमुक चीज है ना उसके बाजू में है या सेल्फ है उसके ये तीसरे पीछे वाले कंपार्टमेंट में ये जो कुछ हमने कहना है हमें तो पर वस्तु के रिलेटेड उसका क्या संबंध है उसको बताते हैं। ऐसे पहले में पहले पर की अपेक्षा से पर की अपेक्षा के अर्थ क्या है? जैसे कोई एक इंद्रिय वाला जीव है कोई दो इंद्रिय वाला शरीर के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करते उसको हम बताते हैं कि उसको समझते हैं कि ए पांच सब ये पृथ्वी का एक आदि पांच स्थावर है वो एक इंद्रिय जीव है ये दूसरे कोई द्विंद्रिय है हम सभी पंचेंद्रिय है। शरीर के द्वारा उस जीव को पहचाना जाता है पर जीव तो शरीर से भिन्न है फिर भी प्राथमिक अवस्था में उसको ऐसा ही बाहर से समझाया जाता है क्योंकि उसको तो शरीर को ही देखता है उसको तो इतनी मात्र ही पहचान है जीव अरूपी है दिखाई नहीं देता। तो फिर ऐसे पहचानने के बाद फिर आगे की बात उसको समझाई जाती है क्योंकि हम तो देहधारी उनको ही देख रहे हैं ना एक दूसरे को हमने माना भी है कि ये देह ही जीव है तो पहले देह के द्वारा अलग अलग जीवों की पहचान करा के बाद में उसमें से जीव को भिन्न कैसे पहचानना इसका ज्ञान कराया जाता है। तो जीव क्या है अन्य द्रव्य क्या है आदि स्व तथा पर संबंधी नितांत अज्ञानी जीव को सर्वप्रथम जीव की पहचान कराने के लिए पर द्रव्यों की सापेक्षता से समझाते हैं क्योंकि उसने स्व और पर ऐसा भेद जाना ही नहीं जो कुछ इंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहा है ये देह यही मैं हूं ऐसा उसने अपने को उस देह में ही पहचान लिया है। मनुष्य देहधारी जीव देखो हम तो कहते हैं ये मनुष्य है, परंतु अभी हमें दो बातें ख्याल में आ गई, मनुष्य देहधारी जीव, यानी वो देह भिन्न है और वो वहां जीव रहता है वो भिन्न है, पांच इंद्रिय वाला जीव, त्रसकायिक जीव आदि कथन द्वारा, यानी यहां मनुष्य देह को धारण करने वाला, पांच इंद्रिय वाला और त्रसकायिक, जिसकी काया शरीर ही त्रसकायिक है, ऐसे जो अलग अलग जीव है, जीव जिन संयोगों में पाए जाते हैं उनका ज्ञान करा के जीवों का अस्तित्व और स्थान निश्चित किया जाता है। पहले मैंने उस देह में वो जीव रहता है इतना उसका स्थान निश्चित किया, क्योंकि हम बचपन में स्टोरी सुनते थे, कोई राक्षस था वो कहीं रहता था, फिर उसने किसी को पकड़ लिया तो कह रहा है तेरा प्राण किधर है, तो अरे मेरा प्राण तो वो पर्वत पर है, उस पोपट में है। तो ऐसे जीव कहीं और रहता हो और उसका प्राण कहीं और, ऐसा नहीं है। तो जिस अभी वर्तमान में तो हम ऐसा कहेंगे ना, ये देहधारी जीव है, जहां ये देह पाया जाता है वहीं पर वह जीव रहता है। जीव का जीवपना यानी जीवत्व कायम टिकने के लिए उसे देह इंद्रिया कर्म आदि किसी भी परद्रव्य की किंचित मात्र भी अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। जीव हम किसको कहते हैं, तो जिसमें ज्ञान दर्शन सुख आदि गुण पाए जाते हैं उसको जीव कहते हैं। जीव यह द्रव्य है और उसके गुण कौन से देखे हमने, अभी हम समझे ना, ज्ञान दर्शन आदि, तो उसके साथ उसका कैसा संबंध है, आपने तीन संबंध सीखे थे ना, जीव का और उसके गुणों का कैसा संबंध है, यहाँ तीन संबंधों के नाम लिखे थे। हाँ बोलो श्रुति।
नित्य
तादात्म्य संबंध, उसका अर्थ क्या है, वो गुणों से रहित वो कभी नहीं होगा,
गुण कभी छूटे नहीं,
कभी छूटे नहीं पड़ते, हम द्रव्य ही उसको कहते हैं, वो बात अभी आएगी आपको क्रम से। तो उसका जो जीवत्व है, जीवत्व का अर्थ है उसका जीवपना, जीव का जीवपना हम कैसे पहचानते हैं, तो जहां ज्ञान दर्शन व्यापार होता है वह जीव है, ये जीव का जीवपना है, तो उससे कब छुट्टा पड़ेगा, वो जीवपना से रहित कभी नहीं होगा, उसका वो त्व है ना, उसका पना है ना, जैसे हम कहें ये वृद्ध है और उसका वृद्धत्व, ये माता है ये उसका मातृत्व, उसका वो लक्षण हो गया, तो उससे वो तो कभी भिन्न नहीं होता है। तो जीव का जीवत्वपना हमेशा ही रहेगा ही, यानी जीव जीव ही रहेगा, कभी जीव अचेतन नहीं होगा। तो जीव को जीवपने रहने के लिए कर्म की आवश्यकता है क्या, बोलो बोलो, कर्म की जरूरत है कि नहीं है, हम निश्चित करेंगे ना, क्या जरूरत है, नहीं नहीं हमें पक्का करना है, हमें उत्तर नहीं चाहिए, हमें पहले निर्णय करना,
हम सिद्ध तो है नहीं ना, इसलिए हम कर्म जो हमने संचित किए हैं वो मुक्त होने के लिए खपाना पड़ता है।
आपका कहना है कि हम तो सिद्ध नहीं है इसलिए मुक्त होने के लिए हमें कर्म खपाने चाहिए, आप ही मेरी तरफ से उत्तर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न है, जीव को जीव रूप से रहने के लिए कर्म की आवश्यकता है कि नहीं है, अभी आपका रीजनिंग दे दो, आपने कहा हाँ कर्म की आवश्यकता है, क्यों,
क्योंकि कर्म ही, जैसे आपने बोला कर्म बनते है उसका उदय होता है,
कर्म बनता है उसका उदय होता है, परंतु जीव को उसका जीवपना नष्ट होता है क्या, जीव ही रहता है,
जीव ही,
यदि कर्म की आवश्यकता हो तो सिद्धों का जीवपना नहीं रहेगा, सिद्ध जीव है कि नहीं है, तो रहित होने के बाद भी सिद्ध है कि नहीं है, जैसे कर्म ये क्या है, ये अपनी विकारी अवस्था है ना, विकारी अवस्था में परद्रव्य का संयोग हो तो परद्रव्य अपने से छुटा ही है, अभी संयोग रूप से है और उसका जो कुछ उदय चलता है बंद चलता है, उस समय भी जीव का जीवपना नष्ट हुआ क्या, नहीं तो जीव से अचेतन हुआ कि पुद्गल हुआ, क्या हुआ, छह द्रव्य में संसारी जीव सभी कर्म से सहित है, तो क्या वो जीवपना उनके है कि नहीं है, तो कर्म की जरूरत है कि नहीं पहले नक्की करना पड़ेगा।
नहीं,
जरूरत होती तो हम तो कर्म से मुक्त नहीं होना चाहते। अच्छा, शरीर की तो जरूरत है कि नहीं जीव को रहने के लिए?
कर्म सही होते तभी जरूरत पड़ता है।
अपन जरूरत पड़ती है ऐसा आप कहेंगे? जरूरत है कि नहीं है जीव को जीव पने रहने के लिए?
जरूरत नहीं है,
वो तो उसका कमजोरी है, या हम कहेंगे उसको पड़ता है, रहना पड़ता है, दोष है उसका। शरीर धारण करना उसकी कोई जरूरत नहीं है। लोग क्या समझते हैं, ये शरीर नहीं हुआ तो हम कहाँ रहेंगे? तो सिद्ध भगवान शरीर के बिना, कर्म के बिना जी रहे हैं कि नहीं जी? अरे वो तो अनंत सुख में जी रहे हैं। जैसे हमने समझा है, नहीं नहीं अरे हम मनुष्य है, हमको रहने के लिए घर की आवश्यकता है, वैसे हमने क्या मान लिया है, हम जीव है, हमें रहने के लिए देह चाहिए, ऐसी जरूरी है क्या? नहीं, ये पहले नक्की करना पड़ेगा। नहीं है, हमें जीने के लिए कर्म चाहिए।
कर्म होवे तो जीव को जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती।
ये कर्म तो भिन्न ही है अपने से। जीव जीव द्रव्य जब हम कहते हैं, जीव द्रव्य किसको कहना, जिसमें ज्ञान दर्शन है वो आरूपी है, हमने कहा असंख्यात प्रदेशी है। कर्म तो भिन्न परद्रव्य है, उसमें आके चिपके हुए पार्टिकल्स है, वो अनंत आते हैं अनंत निकल जाते हैं। जीव तो अनादि से वही का वही रहा है। देह भी हम देखते हैं, अभी ये मनुष्य देह धारण किया, उसके परमाणु आते हैं चले जाते हैं, फिर ये देह भी छोड़कर हम अन्य भाव में चले जाते हैं। तो अन्य भाव में जाना, दूसरा शरीर धारण करना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। यदि हम कहेंगे कि रोग होना ये हमारे लिए जीने के लिए आवश्यक बात है, क्योंकि हम मनुष्य के दृष्टांत देके समझाते हैं, ये मनुष्य तो है तो मनुष्य को मनुष्यपने रहने के लिए किसी रोग की आवश्यकता है, उसको हॉस्पिटल में जाना ही चाहिए। आप कहेंगे ये क्या मूर्ख है, है ना? क्या हेल्दी रहने के लिए रोग की आवश्यकता है कि नहीं है?
नहीं।
वैसे जीव को जीव पने रहने के लिए कर्म की, राग द्वेष की आवश्यकता है कि नहीं है?
नहीं।
हम कहते आप क्या कहते, अरे थोड़ा क्रोध तो करना चाहिए, नहीं तो सब लोग सीधे नहीं रहते हैं घर में, थोड़ा हम रोग जमा के रखें तो सर्वेंट बराबर काम करेंगे, बच्चे बराबर सुनेंगे, तो थोड़ा तो क्रोध आवश्यक है। तो जीव का जीवपना, ज्ञान दर्शन कायम रहने के लिए ना उसको यहाँ क्या लिखा है, देह की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की। आप कहेंगे इंद्रियों के बिना हम कैसे जानेंगे? सिद्ध भगवान कितने इंद्रियों से जानते हैं? हाँ, उनको शरीर नहीं। अच्छा, अरिहंतों को तो इंद्रिया है ना, अरिहंत भगवान के 5 इंद्रिया है कि नहीं शरीर में, तो उनके कितने इंद्रियों से जानते हैं?
उनको भी केवल अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय के बिना जानते,
तो इंद्रिया पड़ी है तो उससे जानना, द्रव्य इंद्रिया पड़ी है तो उससे जानना ये जरूरी है कि नहीं है? बेन का अभी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी को कैसा ज्ञान कहा? असहाय, असहाय ने किसी की जरूरत नहीं, किसी की सहाय की जरूरत नहीं। हम असहाय किसको कहते हैं? बेचारा अनाथ लड़का है, असहाय। इनको किसी की जरूरत नहीं है, हमें किस किस की? अरे इंद्रियों के बिना नहीं, अरे हम तो चश्मे के बिना नहीं जानते, अरे हम ये प्रकाश के बिना नहीं जानते, यानी उसके वहां निमित्तपना बनता है, तो ये हमारी पराधीनता है, ये हमारी ज्ञान की कमजोरी है। चश्मा लगा के हम पढ़ते हैं तो इससे क्या, ये क्या जाहिर करता है? आंख की कमजोरी है, क्या सौंदर्य का चिन्ह है हमारे? वैसे इंद्रियों से जानते हैं वो जीव की कमजोरी है, ज्ञान की कमजोरी है पर्याय में, परंतु उसकी जरूरत नहीं है जीव को। अभी भी इंद्रिया होते हुए भी जो जानने का कार्य करता है वो जीव स्वयं करता है, पर उसका ज्ञान अल्प है, उसको मीडियम चाहिए। ये चश्मा देखता है कि आप देखती हो? हम देखते हैं ना, वैसे इंद्रिया नहीं देखती, हम स्वयं देखते हैं, परंतु हमारा ज्ञान अभी कमजोर है, जिसको हम क्षोभ ज्ञान कहेंगे। और हमारा स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान के द्वारा जानना, जीव का जीवपना कायम रखने के लिए ना उसे देह की जरूरत है, ना इंद्रियों की है, ना कर्म की है, ये सब उपाधि है। हमारे ही अज्ञान के कारण ये इकट्ठे होते हैं और हम बार बार बहुत बहुत भ्रमण करते रहते हैं। तो देह, इंद्रियां, कर्म आदि आदि में सब कुछ लेना, किसी भी परद्रव्य की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे ये घर की तो जरूरत है कि नहीं, हम तो यहाँ जीव की बात कर रहे हैं। जिसके घर नहीं है ऐसे अभी हम यहाँ तो बहुत हिरण वगैरह देखते हैं, आपके यहाँ आते कि नहीं आते? वॉशिंगटन में बहुत बहुत देखते थे, वो टेम्पल के बाहर 10-12 हिरण आते थे रोज। तो उनके कहाँ घर है वहां पर? तो जैसे हमने देखा देह के बिना जीव कैसा रहेगा, तो घर के बिना कैसा रहेगा, हम कहेंगे फिर पैसे के बिना कैसा जिएगा। तो उसको जीव का जीवपना ज्ञान दर्शन जो उसका स्वभाव है, जानना देखना, जानना देखना एक कार्य है, उसके लिए ना देह की जरूरत है, ना कर्म की, ना इंद्रियों की, ना पैसे की, ना घर की, ना किसी की। जीव तो जीव है, त्रिकाल जीव ही रहेगा। यदि इनकी जरूरत होती तो सिद्ध भगवान में जीवत्व नहीं रहता। हमें तो न्याय से बातें देखनी है, सोचना है, सोचने की आदत डालनी हमें है ना। परंतु इन्हें किसी की अपेक्षा तो है ही नहीं है अभी, ना देह की ना किसी की। परंतु समझाने के लिए हम बच्चों को अगर समझाना चाहते कि ये जीव है और ये जीव नहीं है, क्यों? क्योंकि बचपन से हम आदत डालते हैं ना, अरे यहाँ जीव रहते हैं, इनकी हत्या मत होवे। तो कहाँ जीव, जैसे ये खंबा है तो ये अजीव है, इसमें कोई जीव नहीं है। परंतु वहीं पर कोई वनस्पति रखे तो हम कहें ना ये सजीव है, ये जीव है, तो इसकी हत्या नहीं करो, ऐसा हम कहेंगे बच्चों को भी। तो कहते हैं समझने और समझाने के लिए दृश्य बातों का अर्थात पुद्गलों का, पर पदार्थों का और रागादिकों का स्वरूप बताया जाता है, क्योंकि ये बातें हमारी परिचय की है, अनुभव की है, उनके द्वारा जीवों का अनुमान कराया जाता है। देखो जीव तो अरूपी है, आंखों से दिखाई नहीं देगा। अनुमान का अर्थ क्या है? अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे अंदाजा लगाना? जैसे हमने देखा ना वनस्पति कायिक जीव है, अग्नि कायिक जीव है, तो वो काया भिन्न है, जीव भिन्न है। अग्नि वो देह है और उसमें रहने वाला जीव भिन्न है। जल कायिक जो काया है वो भिन्न है, जीव भिन्न है, परंतु वहां जीव रहता है, इसलिए उसको देखकर हम वहां अनुमान लगाते कि यहाँ जल कायिक जीव है, यहाँ वनस्पति कायिक जीव है, यहाँ अग्नि कायिक जीव है। अब इंद्रियों वाले हम देखते हैं, ये द्विइंद्रिय जीव है, ये तीनद्रिय जीव है, ये मनुष्य जीव है। हमने काहे से उसको समझाया? शरीर को देखकर उसके द्वारा हमने जीव का अनुमान लगाया कि यहाँ जीव रहते हैं, ऐसा हमने अनुमान किया। देखो अनुमान का अर्थ हम थोड़ा देखते हैं, अनुमान क्या होता है। एक ये न्याय पद्धति है जिसको हम कहते हैं ना कि टू कम टू सम कंक्लूजन। कैसे? हमने दूर पर्वत पर धुआं देखा, धुआं देखकर आप किसका अनुमान लगा सकती है? अग्नि का। क्यों? अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, तो जहां धुआं है वहां अग्नि होनी ही चाहिए। अभी अग्नि नहीं दिखाई दे रही, हम तो केवल धुआं देख रहे, तो हमने अग्नि का अनुमान किया। इसको कहते हैं अनुमान ज्ञान। ये भी एक ज्ञान का प्रमाण, ज्ञान का एक हाँ एक प्रकार है, एक उसका भेद है उसका एक। तो हमें अभी जीव का अनुमान लगाना है अपना, नहीं अभी पर जीवों का पहले देखेंगे, यहाँ भी जीव है, यहाँ भी जीव है, यहाँ इतने जीव रहते हैं, ये हम अनुमान के द्वारा उसको कहते हैं। जैसे जहां राग द्वेष का कार्य चल रहा है, किसको राग आता है, राग द्वेष होते हैं? पुद्गल को क्या?
मनुष्य को।
मनुष्य को आता है कि तिरंचों को भी आता है?
जीव को भी।
हाँ, सभी जीवों को। अभी जो है, अभी जो वितरागी नहीं हुए हैं उनके तो राग द्वेष चलेगा। मेरा प्रश्न है, ये बाहर जो वनस्पति का इतनी वनस्पतियां दिखाई देती है, उनको क्रोध आता होगा कि नहीं होगा? नहीं आता। हाँ, आप क्या कहते बेन? हाँ, आता हो, वो हंसती होगी ना, हास्य वगैरह होगा कि नहीं होगा? हाँ, आप क्या कहते बहन, यहाँ अनुमान काम करेगा अभी अपना, नहीं हंसेगी, हंसना रोना कुछ नहीं होगा ना वहाँ पर, हास्य रति अरति शोक भय जो
उसे अच्छी तरह हम देखभाल करते हैं तो हमको लगती है,
क्या लगता है
वो हंसती है,
वो हंसते है,
उसकी निगाह रखेंगे
उसको देखकर हम खुश होते हैं, हमको लगता है वो भी खुश होते होंगे। हाँ, बच्चों को हम बहुत प्यार करते हैं, उनको किस करते हैं छोटे बच्चों को, अरे वो तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं। हमारा वो प्रश्न नहीं है, हमारा क्या प्रश्न है, वनस्पति जो है अब पृथ्वी का एक जो कोई होगे तो वहाँ उनको क्रोध होता होगा कि नहीं? आप नहीं कहते, आप क्या कहते बहन? होता है, क्यों होता है?
वनस्पति में जीव है ना?
हाँ, जीव है, और वो कितने इंद्रिय वाला है?
एक इंद्रिय
गुण कौन से गुणस्थान में है? मिथ्यात्व गुणस्थान में। मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने कषाय है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याकरण, प्रत्याकरण, संज्वलन, चारों, और सभी नौ कषाय भी है वहां पर, नहीं तो वो ये वेद वेद सब कुछ चल रहा है वहां, हम उसको देख नहीं सकते। आप कहेंगे वनस्पति कैसे हंसती होगी, क्या फूल ऐसे होते होंगे, ये बाहर बाहर उसका कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा, परंतु वहां भी उस जीव को परिणाम है कि नहीं है? यदि परिणाम नहीं मानेंगे तो वीतरागी मानना पड़ेगा, उनको बंध रहित मानना पड़ेगा, फिर उनका आगे का भव भ्रम रुक जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, एक इंद्रियों में जाना अच्छा है। प्रत्येक बात पर हमको सोचना चाहिए, यानी वी शुड कम टू द कंक्लूजन, क्यों ये जीव है वहां तो कोई सम्यक दर्शन होने का चांस ही नहीं है, और ना ही कोई वीतरागी है वहां पर, तो उनमें राग दशा है ही पूरे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सब कुछ चल रहे है वहां पर, और फुल फॉर्म में वहां बंध भी हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि बाह्य में दिखाई दे। अब जो कोई कोमा में गया है उसके राग द्वेष चलते होंगे कि नहीं चलते होंगे? हाँ बहन, आप क्या कहते हैं? हमको अनुमान लगाना है, यही तो है ना बात, क्योंकि हम जो शास्त्र में सीखते हैं यहाँ पर उसको हम एप्लीकेशन करना आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि बंध से रहित कभी हुआ ही नहीं अनादि से जी, हर समय उसका बंध चल रहा है, क्यों? हर समय उसका कषाय चल रहा है। तो नींद में अभी बता, नींद में भी सभी चल रहे हैं, नींद में भी बंध हो रहा है, नहीं तो नींद में वीतरागी हो जाएगा तो कोई उठना ही नहीं चाहेगा।
राग देश आत्मा की विभव दशा है।
हाँ, आत्मा की विभव,
आत्मा तो है ही, तो फिर विभव दशा भी
चलेगी ही, जब तक वो वीतरागी नहीं है तो विभव दशा चलेगी ही, यानी विभव दशा के ऊपर से हम आत्मा का अनुमान लगा सकते हैं, और जहाँ जीव है ऐसा हमने आगम से जाना है तो वहाँ वो विभव होने ही चाहिए, क्योंकि अभी उसके स्वभाव पर्याय उस दशा में शुरू नहीं हो सकती है। कितना आसान है ना ये जानना, तो उनमें भी सभी क्रोध वगैरह, क्रोध चलेगा ना तो चारों क्रोध एक साथ होते हैं, ऐसा है। उदय की बात हमने देखी थी, कर्मों का उदय चलता है हमने देखा था, जब किसी को क्रोध हो रहा होगा तो उसको क्रोध का उदय चल रहा है, कौन कौन सा क्रोध हो रहा है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याखनावरण, प्रत्याखन, चारों क्रोध एट ए टाइम होते हैं। आप कहेंगे तीव्र भी क्रोध है और मंद भी क्रोध है? नहीं, जब ये अनंतानुबंधी का उदय है तो ये बाकी तीन अनंत अनुबंधी जैसा बिहेव करते हैं, आपको तो मालूम है सब। किसी रूम में बच्चे उधम करते होते हैं तो उसमें एक बच्चा जरा ज्यादा उधम करता है, उसको देख देख कर बाकी भी उतने ही उधम मचा, उस एक बच्चे को दूर करो तो थोड़े शांति से रहते हैं। अनंतानुबंधी के उदय में बाकी तीन भी अनंतानुबंधी जितना ही तीव्र उसका फल देते हैं।
संक्रमण होता है?
संक्रमण नहीं होता, अपने रूप से उदय में
संज्वलन अनंतानुबंधी हो जाता है?
नहीं हो जाता, संज्वलन रूप से ही रहता है, पहले गुणस्थान में जो संज्वलन का उदय है उसका तीव्र उदय है। अब जब ये तीन चले जाते अकेला संज्वलन का उदय होगा तो वहां उसका मंद उदय चलता है उसका, उसमें भी वो जो कुछ अनुभाग है ना फल देने की शक्ति मुनि राजों के जो है वो कम हो जाती है।
तो मुझे समझ में नहीं, मिथ्यात्व के उदय में
मिथ्यात्व
तीनों कैसे
चारों का एट ए टाइम उदय चलता है, एट ए टाइम चारों का उदय.
व्हाई इज देयर इंटेंसिटी मोर देन.
हाँ, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है. जहाँ अनंतानुबंधी का उदय है तो बाकी देखो प्रत्येक कर्म में ये इन चारों में वह अनुभाग का अनुभाग युक्त जो परमाणु है ना उसको स्पर्धक कहते हैं. उसमें मंद से तीव्र तक अनेक अनंत स्पर्धक होते हैं. तो जब मिथ्यात्व अवस्था में उसका तीव्र अनुभाग का उदय होता है, अनुभाग का उदय तीव्र होता है. जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो चारित्र मोहनीय और हमने देखा सम्यक तो प्राप्त होने के पहले पहले तत्व विचार का काल शुरू हुआ. उसमें सभी कर्मों का जो जो पाप कर्म है सभी कर्मों का अनुभाग घटता चला जाता है. अनंतानुबंधी का भी घटेगा अभी क्योंकि वो मिथ्यात्व में है. मिथ्यात्व का भी घटेगा अनुभाग. फलदान शक्ति तीव्रता कम हो रही थी. अब ऐसा जो सम्यक दृष्टि हुआ अब उसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय तो मिट गया. अभी सत्ता में पड़े हैं. अब उदय किसका चलेगा? प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का. परंतु उसका उदय ऐसा नहीं जब ये था क्योंकि उसका अनुभाग मंद होता चला जाता है. अप्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान ही रहता है परंतु उसको फलदान शक्ति उसकी हीन हीन होती चली जाती है. अब इसकी इतनी ही नहीं अभी अब जिसकी इतनी तीनों की है पांचवे से ऊपर के गुणस्थान में गया छठे सातवें गुणस्थान में तो इसकी फलदान शक्ति जो पूर्व में थी उससे भी हीन हो गई है. तो वो प्रत्याख्यान आवरण.
लेकिन
तो ऐसा नहीं अनंत अनुबंधी गया एक पछी एक के बाद एक नहीं जाता है.
कब जाएगा एक के बाद एक? जब वो आत्मानुभूति करेगा एकाग्रता करेगा उसके दो कषाय अभाव हो गए तो हम कहेंगे पांचवे गुणस्थान में जाएगा. कभी कभी उस पूरे भव में चौथा ही गुणस्थान रहेगा. जैसे श्रेणिक राजा का कौन सा गुणस्थान था मालूम है? श्रेणिक राजा श्रेणिक राजा श्रेणिक
राजा
उसको क्षयिक सम्य दर्शन हुआ था. उसका गुणस्थान कौन सा था? उसको श्रावकोत्तम कहा ना. चौथा के पांचवा नक्की करो बाबा.
पांचवा जब यहाँ थे तो पांचवा
क्यों
नहीं? चौथा ही था.
क्यों?
अविरत समय
चौथा था कि क्यों पांचवा था तो क्यों? हम दोनों के लिए क्यों कहीं? हाँ बोलो बेन.
क्योंकि वो सब व्रत नहीं कर सकते थे.
क्यों नहीं कर सकते थे? हमें क्या मालूम उसने व्रत लिए कि नहीं लिए?
ऐसे शास्त्र में होता है अविरत का
अविरत संयुक्त था. देखो ऐसा नियम है जिसने पहले नरकायु बांध ली है उसके पांचवा गुणस्थान हो ही नहीं सकता ना ही वो मुनि हो सकता उस भो में.
अच्छा
अब इसकी तो बात छोड़ो. और एक नियम है जिसने पहले मनुष्यायु बांधी है पहले तीर्यंचायु बांधी है या कोई ने नरकायु बांधी है ऐसा जीव ना पांचवा गुणस्थान प्रकट कर सकता है ना छठा सातवा मुनि का. यानी वो मुनि भी नहीं हो सकता ना ही वो अनुवृत्ति हो सकता है. ये बिल्कुल अकाट्य नियम है. ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है. ऐसे बहुत सारे नियम है. जब कभी मौका आएगा तब कहेंगे हम.
वापस
मुनि तो मनुष्य में ही होता है.
और कुछ वाले भी तो बीजा स्टॉप इस पर जारी.
हाँ
अनु मैं आई एम स्टिल स्टक. और अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान लेते हैं तो इंटेंसिटी अनंतानुबंधी की इंटेंसिटी तो ऐसे ही खूब ज्यादा है.
नॉट ओनली इंटेंसिटी
तो कम है ना.
नहीं देखिए
इफ यू कैन यू गिव मी एग्जांपल और पुट इट लाइक गिव मी नंबर लेट्स अनंतानुबंधी इंटेंसिटी इज मिलियन अप्रत्याख्यान वुड बी हाउ मच.
देखिए देखिए आपके ऐसा कहना है कि अनंतानुबंधी की इंटेंसिटी मिलियन है और अप्रत्याख्यान के मान लेते हैं कि 10,000 है. ऐसा नहीं ऐसा नहीं है. अनंतानुबंधी में भी मिलियन से लेकर 5,000 तक की अलग अलग वेरिएशन से इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली अनंतानुबंधी नहीं कहलाता. क्योंकि अनंतानुबंधी होते हुए मिथ्या दर्शन होते हुए कृष्ण लेशा से शुक्ल लेशा तक के सभी परिणाम हो सकते हैं. तो शुक्ल लेशा वाला कितना मंद कषाय है?
नवे ग्रेविक वाला
नवे ग्रेविक में जाने वाला भी और वहां रहने वाला भी. अब वहां नवे ग्रेविक में 31 सागर काल तक रहता है और शुक्ल लेशा रहती 31 सागर तक.
मिथ्यात्वी को शुक्ल लेशा होती
हो सकती
है? वही तो बता रहे
शुक्ल लेशा पहले चार गुणस्थान तक अभी जो सम्यक दृष्टि उसको भी कृष्ण लेशा हो सकता
है, वो तो पता है।
परंतु मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लेशा, क्योंकि शुक्ल लेशा के बिना मरकर कोई ग्रेवेक में नहीं जा सकता,
शुक्ल लेशा
छो लेशा होता। तो हमें तो लेशाओं का बाहर से हमें क्या दिखाई देते हैं, कितना भला जीव है, बाहर से उसके कोई क्रोधादि चिन्ह नहीं दिखते इतने कि वो कितना मंद कषाय दिखता है, क्योंकि शुक्ल लेशा कहेंगे ही उसको कि मंद कषाय है। मंदता ये कषायों की जाति नहीं है, वो इसकी इंटेंसिटी है।
तारतम्यता बोले ना जो
ये जो कषायों की जाति किसको कहना, अनंतानुबंधी किसको कहना, जो सम्यक्त्व नहीं होने देती।
ठीक है,
सम्यक्त्व नहीं होती क्यों, क्योंकि उसके अभी जो मंद कषाय चल रहे हैं ना, तो उसकी मान्यता मिथ्या दृष्टि की मान्यता कैसी है, ये कषाय है ना मंद, वो करने जैसे है, मैं इसको कर सकता हूं, मुझे ये करने ही चाहिए, उस राग में एकत्व बुद्धि है उसके। जैसे शरीर मैं हूं मानता है ना, तो शरीर से जीव जुदा है, ऐसे सभी सभी मत वाले कहते हैं, हिंदू भी कहेंगे, हम जैन भी कहेंगे, अन्य भी कहेंगे कि शरीर जुदा है आत्मा जुदा है, परंतु राग से जीव जुदा है और उसकी भिन्नता पहचाननी चाहिए, ये जिनागम के अलावा और कोई नहीं कहता। अब वो अनंतानुबंधी कैसा है कषाय, जीव को सम्यक्त्व नहीं होने देता, जीव की राग में एकत्व बुद्धि है, राग को करने जैसा मानता है और उसी से पुण्य करते करते मुझे मोक्ष होगा ऐसा मानता है, ये है अनंतानुबंधी कषाय। हमें क्या लगता है अनंतानुबंधी ने बहुत तीव्र राग द्वेष करता है, वो अनंतानुबंधी ऐसा नहीं है,
अप्रत्यक्ष यानी तो सम्यक दर्शन होने देता है, तो फिर मिथ्यात्व में कैसे वो अनंतानुबंधी के जैसे बिहेव करेगा,
क्योंकि जब अनंतानुबंधी का उदय है तब उसके तीव्र अनुभाग का उदय है, तो तीव्र अनुभाग का उदय है तो उसका यानी उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है ना, उसमें जितना मैक्सिमम अनुभाग है उसको हम अनंतानुबंधी नहीं कहेंगे, कहेंगे तो अप्रत्याख्यान ही,
परंतु जैसे बिहेव करेंगे,
जैसे बिहेव करते हैं ना वो तीव्रता से बिहेव करते हैं, उसके मैक्सिमम जो कुछ वहां
उसका मैक्सिमम जो है,
क्योंकि अनंतानुबंधी के रहते हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरे इसके संज्वलन के उदय से ये मंद कषाय हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को ऐसा नहीं कहेंगे ये मंद कषाय हो रहे हैं ना, ये संज्वलन के कारण हो रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जहां अनंतानुबंधी है वहां सब है, जहां अनंतानुबंधी गया तो वहां तीनों ही है, हम कहेंगे क्या अप्रत्याख्यान के उदय में उसको नहीं हो रहा है, परंतु तीनों का उदय चल रहा है ना, हमारी बात अलग हो रही थी। हाँ,
हर समय चारों का उदय रहता ही है जब तक मिथ्यात्व,
हाँ जब तक मिथ्यात्व है हर समय चार का ही उदय रहता है, हमने सोलह का नहीं कहा, चार यानी क्रोध के चारों या मान के चारों या माया के चारों या लोभ के चारों, परंतु बंध सोलह का होता है हर समय, समझ में। जीव क्रोध करता है तो कितना टाइप का क्रोध होता है एट अ टाइम, चारों कर्मों का उदय है उसका, कौन से चार,
अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी
संज्वलन, ये चारों क्रोध का उदय है, और उसका बंध कितना हो रहा है मालूम है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया, करता क्रोध है और बनता सोलह है। तो अभी मुझे बताओ, अभी क्रोध करेगा तो भी सोलह बंधेगे, मान करेगा तो भी सोलह बंधेगे, माया के परिणाम में भी सोलह बंधेगे और लोभ के परिणाम में भी सोलह के सोलह बंधेगे, तो क्या करना अच्छा है, यानी कोई भी कषाय अच्छा नहीं, क्योंकि हमें तो क्रोध करने वाले का क्रोध दिखता है, मायाचारी और लोभ तो बाहर से दिखता नहीं है ना, तो हमें क्या लगता है, अरे ये तो बहुत शांत है और ये बहुत क्रोधी है, परंतु जब तक मिथ्यात्व है तब तक ये उसके कुछ न कुछ चारों में से, और उसका पलट ना होता है, कोई एक कषाय हम किसी को कहते भी ये क्रोधी है, परंतु कोई क्रोध हो या मान या माया या लोभ, चारों ही है वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटते रहते हैं, किसी का ऐसा नहीं कि वो हमेशा क्रोध का ही उदय हो, बहुत अल्पकाल में वो क्रोध का मान, मान का माया, माया का लोभ ये होता ही रहता है, हमेशा उसका परिवर्तन चलता ही रहता है चारों कषायों का।
जब अभी अगर हम अभी ये प्रवचन सुनते हैं तभी भी क्रोध मान माया लोभ में से कोई एक
चल रहा है, मंदता से चल
रहा है। जैसा भाव रहेगा वैसा ही
भाव रहेगा ही, शुभ भाव के काल में है कि नहीं वो,
तो प्रमाण बंद होता है।
शुभ राग के काल में भी वहाँ वैसा लोभ चलेगा उस टाइप का भी, जैसे अभी हम कहते हैं दसवें गुण स्थान में कैसा लोभ होगा, वो थोड़ा ही संपत्ति का लोभ है, वहाँ लोभ कषाय कहा है ना, वो कितना मंद राग है, तो राग की मंदता भी वो कषाय है, ये मुख्य में समझना है। और जहाँ कषाय है वहाँ बंध है, कषाय से बंध ही होगा, छुटकारा अगर उसमें से लेना है तो कषाय रहित अवस्था होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि होने पर मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का बंध रुक गया है, बाकी तीन का तो बंध चल रहा है, उदय भी चल रहा है,
तो वहां भी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व गया और प्रत्याख्यान चालू है।
हाँ।
तो वहां कितने का बंध पड़ेगा, यहाँ 16 का पड़ता है, वहां 9 का पड़ेगा,
12 का,
कौन सा,
वहां 12 का,
वहां
12 चार तारीख
12
चौक 12 होता है,
चार तारीख सॉरी।
और आप जो स्वाध्याय की बात कर रही है वहां लोभ कैसा है ना, सत्य बात समझो इसका लोभ है ना।
और भले डेढ़ घंटा दो घंटा स्वाध्याय करते तो उसमें कितने बार ये चारों का परिवर्तन होगा,
कोई बात आपके मन विरुद्ध आएगी तो आप क्रोध करेंगे मन में ही मन में,
ये अबुद्धि पूर्वक का चलता है ना, वो तो ख्याल में नहीं आता, हमारे तो उपयोग यहाँ लगा है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है।
हम सोचते हैं कि हम जब स्वाध्याय में बैठता है तो मेरा कर्म बंद होता ही नहीं है।
कर्म बंद नहीं होता तो हम वितराग हो जाते उतने काल के लिए, है ना। कर्म का बंध चलता ही रहता है, यही तो हमें समझना है, क्योंकि हम अपनी कल्पना से कुछ मान लेते हैं ना और उसमें संतुष्ट भी हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे धर्म की शुरुआत नहीं हुई और हमने मान लिया हम मोक्ष मार्ग में है, नहीं समझे, हमें कहीं जाना है, सुबह जो हमने एग्जाम्पल लिया था तो कहीं जाना है और हम गलत रास्ते पर चल निकले और मान लिया नहीं हम राइट,
हाँ,
और हम चलते गए तो क्या होगा, वो तो हम दूर दूर चल जा रहे हैं और मान रहे कि हम राइट पाथ पर, ऐसे ही यहाँ हमें तो पहले में पहले हम जो रास्ते पर चल रहे हैं वो सीधा यानी वो सही है कि नहीं इसका निर्णय करना है।
तो भरत चक्रवर्ती था वो सम्यक दृष्टि था और वो भी लड़ाई तो करते थे, उसका तो परिणाम में अभिप्राय में
परिणाम। देखो देखो आपका प्रश्न ऐसा है, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था फिर भी लड़ाई पर गया तो क्यों गया, कौन से गुण स्थान वाला था,
चौथा
गुण स्थान वाला, वही तो बताया ना हमने, अभी उसका अप्रत्याख्यान और मिथ्यात्व का उदय नहीं था, सॉरी अप्रत्याख्यान उदय चालू था और अनंतानुबंधी नहीं था, उसको क्षायिक समय दृष्टि था, वो तो कोई सवाल ही नहीं था कि उसको मिथ्यात्व वाले परिणाम का, फिर भी तीन कषाय चौकड़ी बाकी है उसके, हम तो उसके बाह्य क्रिया से उसको नापना चाहते, वही तो बात है, उसको ना मिथ्यात्व है ना अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, तीन कषाय तो उसको कुछ अच्छा लगता होगा। सम्यक दृष्टि के भी जो वहां राग द्वेष चलते हैं अंदर से उसको वो करने जैसा हम नहीं मानता, नॉट ओनली पाप पुण्य भी करने जैसा नहीं मानता,
अभिप्राय
होते हैं, होते हुए को जानेगा, हम क्या मानते हम कर सकते हैं।
ये अभिप्राय का अर्थ क्या ले रही हैं आप,
अभिप्राय का
कर सकता,
अभिप्राय ने मान्यता,
मान्यता में फेर नहीं है, उसके अभी चारित्र होनी बाकी है उसके कारण वो हो रहा है, उसका अभिप्राय में फेर हो जाएगा तो उसका मिथ्यात्व नहीं रहेगा और उसका मिथ्यात्व समय तो नहीं रहेगा, उसका तो मिथ्यात्व आ ही नहीं सकते क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि है,
अभिप्राय में कोई खोट नहीं है। और फिर भी हमें जो ऐसा लगता है ना, यही तो है, हमें लगता है वो क्यों गया, उसको राग का स्वामित्व नहीं है और हमें लगता है कि उसको इतना नहीं समझता ये गया है, उसके ना राग का स्वामित्व है ना वो शरीर की क्रिया का स्वामित्व, चक्रवर्ती पद में उसके योग्य वहां उसके वैसा परिणाम भी होगा, परिणाम करना चाहता है या रोकना चाहता दोनों ही नहीं होते, क्योंकि रोकना कौन चाहेगा जो उसका स्वामी बन के बैठेगा, नहीं नहीं मुझे अभी नहीं करना है, इसे रोक लगाएगा, स्वामित्व आ गए, रोकना भी स्वामित्व की निशानी है, जय हम क्या कहते ऐसा उसको करना चाहिए, चाहिए वाली बात आई है ना, वो स्वामी बनना चाहिए तो उसका स्वामी है ही नहीं ना, राग का स्वामी है और ना ही कुछ क्रियाओं का, तो जैसा उदय में जैसे होता है वो चलता रहता है।
विचरे उदयाधीन श्रीमद राज।
हाँ, ये उदयाधीन। और हम तो क्या करना चाहते हैं, हम चाहते कुछ करना और मंदने क्या करे, ये उदयाधीन ये गप है। क्योंकि शास्त्र में सुना है ना, उदयाधीन होता है, ये अंदर से करना चाहता है। उनकी बात कैसे, उनको अच्छा लगा होगा भगवान का समोसरण छोड़कर इतने 60,000 वर्ष तक वो चक्रवर्ती पद वो सब राज जीतने चले गए।
अच्छा बुरा क्या कुछ नहीं लगा।
हाँ ऐसा है ना, वो तो वैसे उस परिस्थिति में वैसे परिणाम हो जाते हैं और वो जानता रहता है। उसको उसका स्वामित्व है नहीं, उससे मैं भिन्न हूँ ये सतत हर समय उसकी प्रतीति बनी रहती है। ये हमारे ख्याल में नहीं आता क्योंकि हम अपने अनुभव के अपने जो आचार विचार अपने जो अभिप्राय है उसके द्वारा हम उनको जांचना चाहते हैं। जैसे रामचंद्र लक्ष्मण है, लक्ष्मण के मरण के पश्चात ऐसा ये नियम होता है, ये बलभद्र और नारायण होते हैं ना, आप वासुदेव कहेंगे, ये वासुदेव और नारायण एक ही बात है। तो ऐसा नियम होता है, ये दोनों भाई होते हैं, अत्यंत प्रेम पाया जाता है उन्होंने। ऐसे कितने होते हैं,
12 चक्रवर्ती।
वासुदेव कितने,
9
नारायण 9 प्रति नारायण होते हैं। तो ये जो बलभद्र और जो बलभद्र भी उतने हो गए 9। तो उनमें अत्यंत प्रेम होता है, भाई भाई होते हैं। और वे कैसे सौतेले भाई होते हैं हमेशा, दो माता, उनकी माता अलग अलग है परंतु उनमें इतना प्रेम पाया जाता है। जैसे राम और लक्ष्मण है, कृष्ण और बलदेव है, पहले भी जो हुए थे उनमें ऐसा ही है। तो नारायण मर जाता है पहले और वो दूसरा जो बलदेव है वो उसका शव 6-6 महीने तक ओढ़ता है, इतना प्यार कि ये मर गया है मानने के लिए तैयार नहीं। रामचंद्र की कथा हमने सुनी है सबने,
तो दरेक बलदेव भी ऐसा होता है और सिर्फ राम की बात,
राम की बात आती है मुख्यतः, परंतु ये प्रेम तो सब में रहता है
ऐसे। लेकिन शव लेके गुंडा तो सिर्फ
ये रामचंद्र राम की बात, खास उसकी बात हमने सुनी है।
हाँ। सुनी है, पर होता सब में
होता होना चाहिए ऐसा, क्योंकि उनमें इतना प्यार होता रहता है। तो हमें ऐसा लगता है मूर्ख है क्या, हमें
तो
जो बात समझ में,
भगवान थे तो
कौन भगवान थे,
राम
तभी राम भगवान थे क्या,
शादी थी ना की
देखो देखो
तद्भव मोक्षगामी जीव थे।
भगवान कब हुए, देखो भगवान कब हुए इसका निर्णय करना है। भगवान कब हुए, लक्ष्मण को कंधे पर लेके घूमते थे तभी भगवान थे क्या, भगवान कब हुए, घर में रहते रहते हुए कि नहीं हुए, हम उनको भगवान कब कहेंगे। उन्होंने घर छोड़ा होगा, मुनि हुए होंगे, फिर वो तपस्या की और फिर जाके केवल ज्ञान हुआ। घर में रहते रहते भगवान थे क्या, नहीं, उनको पहले भगवान कहते थे, उपचार से कहेंगे हम। जैसे हम कहेंगे ना, तीर्थंकर महावीर का जन्म कब हुआ, बोलो श्रुति, चैत्र शुक्ल तीर्थ। तीर्थंकर का जन्म हुआ क्या के बालक का हुआ, फिर भी उपचार से कहते, पर हमें उसमें समझना चाहिए, तब वो तीर्थंकर नहीं थे, तब वो बालक थे।
आदिनाथ भगवान ने
द्रव्य तीर्थंकर,
हाँ द्रव्य से थे परंतु उसको हम कहेंगे तीर्थंकर। अभी हम कहेंगे आदिनाथ भगवान की कितनी शादियां हुई थी, बोलो
द्रव्य थी तीर्थंकर,
आदिनाथ भगवान की कितनी शादियां हुई थी, उनको कितने पुत्र पुत्रियां थे, किसको, भगवान को थे क्या,
नहीं
राजा ऋषभ थे,
राजा ऋषभ।
तो वो भगवान कैसे बने, राज्य पद का त्याग किया, हमने देखा वो नीलांजना का नृत्य देखते थे तब उनको हम भगवान कहते थे क्या, नहीं
कहते।
फिर उन्होंने वो वैराग्य हुआ, फिर उन्होंने दीक्षा ले ली, फिर वो तो वन में चल गए, इतना उन्होंने तपस्या की और फिर बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। जब केवल ज्ञान हुआ तब हम उनको भगवान कहेंगे। पहले भगवान जन्मे, भगवान ने शादी की, तो हम कहेंगे अन्य मति के भगवान, जैसे हमारे भी भगवान शादी करते हैं क्या। तो भगवान का स्वरूप हमें निश्चित करना है ना, जैसे हम भी कहते हैं राम मोक्ष गए हैं और अन्य मति भी कहते हैं राम हमारे भगवान हैं, परंतु उन्होंने राम को किस रूप में स्थापित किया, वो धनुषधारी था, तो जब धनुष धारण करता था तब भगवान था क्या, तो भगवान का रूप जानना है तो दिगम ऐसा मुनि अवस्था धारण करके वो बैठे, ऐसा हम कहेंगे तो ठीक है, केवल ज्ञान उस अवस्था में प्राप्त हुए जब मुनि दशा धारण की, कहाँ से मोक्ष गए मालूम है? रामचंद्र जी तुंगीगिरी से, मांगी तुंगी जो डबल है ना क्षेत्र, उसमें से तुंगीगिरी से। और बाकी जो बलभद्र है वो कहाँ से गए? आपने हमेशा देखा है उनको, नहीं मालूम? देखो नौ बलभद्र होते हैं, उनमें से तो एक एक स्वर्ग गए और बाकी तो मोक्ष गए, आठ आठ बलभद्र मोक्ष गए। कहाँ से? हमेशा जाती तो है वहां पर, बोलो श्रुति।
गजपंथा
साथ गए वहां से। हाँ तभी तो देवलाली में आठ मूर्तियां आपने देखी ना, और मांगी तुंगी भी वहां से नजदीक ही है। तो गजपंथा से वो सात बलभद्र वहां से गए हैं मोक्ष। नाम भले याद नहीं है, पर गजपंथा नाम याद नहीं था। देवलाली के नजदीक पहली बार सुना, गजपंथा नासिक के जो नजदीक है, एकदम नासिक के बाजू में है गजपंथा, वो सिद्ध क्षेत्र है। सभी इतने बलभद्र वहां से गए हैं मोक्ष। देखो अभी हम आगे देखो, पांचों पांडव मोक्ष गए नहीं, तीन ही पांडव गए, वो शत्रुंजय जैसे गए। पांच नहीं गए, दो गए, दो तो तीन गए और दो तो सर्वास सिद्धि। इतना तो सेम है कि ग्रह घर में रहते रहते नहीं केवल ज्ञान होगी, नहीं भगवान होगी, मुनि अवस्था धारण करेंगे, फिर मुनि अवस्था धारण करके अरिहंत हो जाएंगे, फिर सिद्ध हो जाएंगे।
तो स्त्री पर्याय मोक्ष जाता है?
नहीं, क्यों नहीं, वो करना नियोग पढ़ो फिर ख्याल में आएगा। हम कहते जाता है ना, वो कहते नहीं वो नहीं चलेगा।
हम लोग क्या सोचते बोलते हैं बताए, केवल ज्ञान तो घर में भी हो सकता है, इमीडिएटली फॉलोज बाय मुनि। भरत चक्रवर्ती को श्वेतांबर संप्रदाय की बात बता रही है आपको, अरीसा भुवन में केवल ज्ञान हुआ और इमीडिएटली मुनि वेश धारण कर लेते, इतना डिफरेंस है। आई एम जस्ट टेलिंग,
नहीं नहीं, क्योंकि यदि केवल ज्ञान घर में हो सकता है तो फिर मुनि होने की जरूरत क्या है, ये भी प्रश्न है।
मुनि होने का नहीं, इट जस्ट हैपेंस, यू डोंट हैव टू बिकम मुनि, यू आर मुनि।
ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
क्योंकि नहीं नहीं, देखो देखो ये जो बातें, ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें हैं जो डिस्प्यूट वाली, उसको करणान योग के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं।
नहीं लेकिन जाने दे,
उसमें नहीं माथा मारना, इसको पहले सीखो, और उसका जो अगर निर्णय करना है तो उसके लिए भी बहुत पॉइंट्स है, परंतु उसके लिए प्राथमिक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि केवल हमने है और नहीं है कहने से नहीं चलेगा।
वो हम सिमंदर स्वामी के पास जाएंगे तब पूछ लेंगे, क्लियर हो जाएगा केवल ज्ञानी के पास।
क्लियर किए बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये बात जान लो। उसका निर्णय अपने स्वयं करना होगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, परंतु उसके लिए जितने आवश्यक ग्रंथ है, जितने जो करणानियोग के नियम है, वो सब है यहाँ पर। अभी जिसका जहां निमित्त, जिस निमित्त से जब कार्य होना है ना, हम निमित्त की ओर से कथन करेंगे, होगा। और ऐसा भी मत कहो कि सिमंदर ही भगवान के कारण ही हमारा होगा, ख्याल में आए ना, ये कहने की पद्धति है, क्योंकि हमें उनके प्रति बहुमान है ना। तो दूसरा ज्ञानी नहीं चलेगा क्या आपको?
कोई भी केवल ज्ञानी चलेगा।
केवल ज्ञानी होना आवश्यक
है,
जरूरी नहीं केवल ज्ञानी की, केवल ज्ञानी का उपदेश यहाँ भी अवेलेबल है। तो हम तो विचार करें और विचार से ये बात निर्णय में आ जाएगी हमारी। जब वैसी पात्रता पकेगी तो हमें वो शास्त्र भी मिल जाएंगे, उस बात पर हमारा विश्वास भी हो जाएगा। तब तक सामने से उपदेश मिलेगा तो भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर के समोचरण में सभी वो सम्यक ज्ञानी नहीं होते हैं, अन्य भी होते ना। हमने भी अनंत बार समोचरण में जाके आए हैं, ऐसे कोरे रहे, हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, देखो हमें तो ये अनुमान की बात चल रही थी यहाँ पर कि जो बाह्य पदार्थ है, शरीर है, कहीं अभी क्रोध मान माया लोभ को देखकर भी हम कहीं अरे यहाँ ये परिणाम चल रहे हैं, यहाँ जीव है, यहाँ भी अपने यहाँ है, तो विकार परिणाम, पर विकार परिणाम किसमें हो रहा है? शरीर में कि जीव में? यहाँ क्रोध का परिणाम चल रहा है, तो शरीर क्रोध कर रहा है कि जीव, तो उसके द्वारा हम जीव का भी अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान ही लगाना है ना, जीव का लक्षण नहीं है क्रोध, ये जीव का लक्षण नहीं है, परंतु वो जीव की पर्याय में होता है, तो वहां जीव का भी अनुमान लगाएंगे। ये है, अलग अलग बातों से हमें जीव का अनुमान लगाना है। अभी इसके लिए एक दृष्टांत दिया है यहाँ पर, है ना, 5-10 मिनट। एक माँ अपने बेटे से कहती है, जा रे बेटा रसोई घर से नमक ले आ। नमक कैसा होता है इस बात की जानकारी बच्चे को नहीं थी, और वह कहाँ रखा इसका भी उसे पता नहीं था। उसे यदि कहते कि नमक नमक जैसा है, नमक नमक में है, तो वह कुछ समझता नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा क्या होता है, आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा में। उसे यदि कहे, हाँ, इसलिए माँ उससे कहती है, बेटा रसोई घर में जा और सामने वाली अलमारी खोल, उसमें नीचे के पटे पर, पटिए पर दाहिने कोने में कांच की बरनी है, उसमें नमक है, वह सफेद है, पर देख उसके बगल वाली बरनी में नमक जैसी सफेद चीज है, वह पीसी हुई शक्कर है, नमक चक्कर देख वह खारा होता है। वो कहाँ है बताया, उससे जैसे दिखने वाली अन्य चीज बताई, और इसका लक्षण भी पहचाना बताया, कि जिसके द्वारा वो अन्य से भिन्न है ये जान सके। बालक ठीक तरह से समझ गया और उसने नमक को ढूंढ निकाला। जब उसे नमक मिल गया और नमक नमक ही है ऐसा उसने लक्षणों द्वारा पहचान लिया, तब उसके ख्याल में एक बात आई कि नमक तो नमक में ही है, बरनी पटिया अलमारी रसोई घर सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, परंतु नमक की प्राप्ति होने पर अब उनसे कुछ प्रयोजन रहा नहीं। पहले ढूंढने के लिए उनका भी प्रयोजन बताया था। नमक का स्थान निश्चित करने के लिए उन्हें जानना जरूरी था, प्रयोजनभूत था, अब उन्हें जानते रहने की आवश्यकता नहीं रही। पहले ढूंढने के लिए जाना, अब उसी को देखता रहे तो नमक नहीं मिलेगा। उनको जानकर नमक को ढूंढ लिया, अब उनको फिर से जानते रहने की कोई जरूरत नहीं थी, उसका प्रयोजन इतना ही था कि नमक कहाँ है ढूंढना। प्रयोजन तो नमक को जानने का था, नमक को जाना और पहचाना तो ही अन्य चीजों का जानना कार्यकारी होगा। यदि उसको नमक ही नहीं मिलता तो उसने रसोई घर को जाना, वो अलमारी को जाना कि कौन सी पटिया जाना, फिर भी नमक को नहीं उसने ढूंढा, तो उनका जानना बेकार हो गया, प्रयोजन नहीं रहा उसका कुछ। परंतु यदि अन्य सभी चीजों को जाना पर नमक को ही न जाना, तो अन्य चीजों का ज्ञान कुछ कार्यकारी नहीं है। उसी प्रकार, अभी होते माता ने बालक को समझाया था, उसी प्रकार जिनवानी माता अज्ञ जीवों को, यानी अज्ञानी जीवों को, उनकी स्वयं की अर्थात जीव की पहचान कराने के लिए सर्वप्रथम जीव को खोजने के लिए 14 मार्गणा और 20 प्ररूपणाओं का विस्तृत वर्णन करती है। ये 20 प्ररूपणा में हम सीखेंगे अभी शाम को, ये कौन गुणस्थान मार्गणा स्थान क्या क्या आते हैं, 20 प्रकार से उसका वर्णन किया जाएगा, उसको प्ररूपणा कहते हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये 6 हो गए, और 14 मार्गणा। इस तरह 20 प्ररूपणा है, इसमें परद्रव्यों के सापेक्ष कथन है ही, यानी हमने ये देखा ना कि ये अलमारी में है, ये पटिए पर है, ये दाहिने ओर है, जो कुछ है, तो यहाँ भी परद्रव्य की अपेक्षा से कथन होगा, कौन से इंद्रिया है, कितनी शरीर, कैसा शरीर है, क्या क्या है, वो सब परद्रव्य सापेक्ष। जीव की अवस्थाओं का भी वर्णन है, यानी कितने कषाय है उसके, वेद कौन से चल रहा है उसके, उसके कौन सा संयम है, कौन सा सम्यक्त्व है, वो सब उसमें, जीव की पर्यायों का भी उसमें कथन होगा। इनके द्वारा जीव की सत्ता निश्चित करने के बाद, पहले जीव यहाँ है ये निश्चित करेंगे, उसके पश्चात लक्षण द्वारा शुद्ध जीव स्वरूप का अर्थात निज शुद्धात्मा का अनुभव करने का उपदेश दिया जाता है। पहले में पहले जीव कहाँ है उसको निश्चित किया जाता है, तो उसमें देह के द्वारा कहेंगे, कषायों के द्वारा कहेंगे, ज्ञान कौन सा चल रहा है उसके द्वारा कहेंगे, योग कौन सा है, ये सभी बातें वहां बताई जाएगी। और फिर वहाँ जीव का जो शुद्ध स्वरूप है उसका ज्ञान कराया जाएगा। क्योंकि पहले जीव कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, कुछ मालूम नहीं है, तो हम बाह्य की ओर से उसको समझाते हैं। यदि जीव ने गुणस्थान मार्गणास्थान आदि जानकर पश्चात उनका लक्ष्य छोड़कर स्वयं को जाना तो ही उपरोक्त सभी बातें जानना कार्यकारी होगा, सार्थक होगा। हमने मार्गणास्थान गुणस्थान सभी नाम रट लिए, बरोबर एक एक पर सभी 20 प्ररूपणाएं लगाई, परंतु जीव को ही नहीं जाना। जैसे वो बालक ने नमक को पहचाना नहीं, बाकी सब कुछ जान लिया, तो ये बाकी जानना निरर्थक होगा। तो जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक ये मात्र वो खाली रटना और करना नियोग का अभ्यास करना निरर्थक होगा। लोग पूछते हैं ना क्यों करना, क्यों करना, क्योंकि इससे भिन्न हम है इसको पहचानने के लिए। इनके द्वारा लक्ष्य तो अपने को पहचानने का है, यदि अपने को नहीं पहचानेंगे तो ये सब निरर्थक होगा। तुम पूछोगे इन सब का लक्ष्य छोड़ना ही था तो प्रथम इनका लक्ष्य करवाया ही क्यों, हम पहले से इन्हें जानना छोड़ देंगे। अच्छा है ना कहना। देखो हमें स्कूल में एडमिशन लेते हैं वहां इंडिया में पहली क्लास में, और 10वीं पास होते ही उसको छोड़कर कॉलेज में जाते हैं। अरे स्कूल छोड़ना है तो पहले एडमिशन ही क्यों ले, डायरेक्ट कॉलेज में जाए ना। तो वैसा है ये। पर जिनका व्यवहार ज्ञान जिनमतानुसार यथार्थ नहीं है, 20 प्ररूपणाओं के संबंध में जिसका ज्ञान खोटा है यथार्थ नहीं है, उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथार्थ होने की जरा भी संभावना नहीं है। जो जीव के ये जो उसके कोई देह के संबंध में, कषाय के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, सम्यक्त्व के संबंध में, मोक्ष मार्ग के स्वरूप के संबंध में, कहाँ केवल ज्ञान होता है कहाँ नहीं होता है, इसके संबंध में ज्ञान यथार्थ नहीं होगा तो उसको सम्यक्त्व होने का थोड़ा भी संभावना नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भी करणानियोग के अभ्यास से इन विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान होने से श्रद्धा सुदृढ़ होने में मदद होती है। तो सम्यक दर्शन होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं ना, नहीं। सम्यक दर्शन होने के पहले भी यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है। सम्यक दर्शन किसी को होगा तो भी अभी उपयोग कहाँ लगाएगा, तो इसकी और सूक्ष्मता जानेगा तो उसकी श्रद्धा और दृढ़तर हो जाएगी। बाकी चर्चा हम करेंगे बाद में, अभी समय हो चुका है। लो 2400 भगवान की जय।